अध्याय एक भाषा विज्ञान की पृष्ठभूमि। भाषा विज्ञान की परिभाषा। भाषा विज्ञान एक यौगिक शब्द है जो भाषा और विज्ञान इन दो शब्दों के योग से बना है। इनमें से भाषा उस वाणी को कहते हैं जो बोलने और लिखने के काम में आती है, तथा विज्ञान उस विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं जिसके नियमों में विकल्प एवं विप्रतिपत्ति के लिए तनिक भी अवकाश नहीं होता, जो अकाट्य एवं अतर्क होते हैं तथा जो सार्वभौम एवं सार्वकालिक भी होते हैं। जैसे प्रत्येक क्रिया की बराबर और विरोधी प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक पदार्थ के अणु पूर्ण चुंबक होते हैं। यदि किसी पिंड को किसी द्रव में डुबोया जाए तो विस्थापित द्रव के भार के बराबर उस पिंड के भार में कमी आ जाती है, इत्यादि अनेक ऐसे वैज्ञानिक नियम हैं जिनमें उक्त अणु दृष्टिगोचर होते हैं। इसी तरह जिस शास्त्र में भाषा संबंधी तत्वों का निरीक्षण एवं परीक्षण करके कतिपय नियम बनाए जाते हैं उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। इतना अवश्य है कि वैज्ञानिक नियमों की भांति भाषा संबंधी नियम अकाट्य एवं अतर्क नहीं होते और न उन्हें सार्वभौम एवं सार्वकालिक ही कहा जा सकता है, क्योंकि भाषा में प्रायः परिवर्तन होता रहता है, उसकी सीमाएं भी बदलती रहती हैं और उसमें अनेक अपवाद भी मिल जाते हैं, जबकि विज्ञान के नियमों में ऐसा कम होता है। फिर भी वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर भाषा विज्ञान भी भाषा की उत्पत्ति, उसके ह्रास विकास एवं उसकी रचना प्रक्रिया पर विचार करता है। अपने ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर भाषा की ध्वनि, भाषा के रूप एवं अर्थों की सम्यक व्याख्या करता है और कतिपय नियमों का भी निर्धारण करता है। भाषा विज्ञान के बारे में विद्वानों की विविध परिभाषाएं मिलती हैं। जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि इनवर्टेड कामा, भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। इनवर्टेड कामा बंद। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने लिखा है कि इनवर्टेड कामा, भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा का, किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का और अंततः भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं या बोलियों के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इन्वर्टेड कामा बंद। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का कथन है कि इन्वर्टेड कामा, भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन कराना है। इन्वर्टेड कामा बंद। भाषा तत्व रत्न श्रीयुत नलिनी मोहन सान्याल का मत है कि इन्वर्टेड कामा, आदर्श भाषा विज्ञान में जितने विषय तथा व्यापार हैं उनका अच्छी तरह पर्यवेक्षण होना चाहिए और इस पर्यवेक्षण के फलों के आधार पर सावधानता से जितनी निरूपण योग्य भाषाएं हैं उनके गठन, इतिहास तथा परिवर्तनों का, उनके परस्पर संबंध का, उनके पार्थक्यों का और इन पार्थक्यों के कारणों तथा नियमों का अनुसंधान होना चाहिए। इन्वर्टेड कामा बंद। इस दृष्टि से श्रीयुत सान्याल के मत से भाषा विज्ञान वह है जिसमें भाषा के समस्त तथ्यों एवं व्यापारों का सम्यक पर्यवेक्षण किया जाता है। प्रोफेसर देवेंद्रनाथ शर्मा का विचार है कि इन्वर्टेड कामा, भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कहलाएगा। इन्वर्टेड कामा बंद। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि इन्वर्टेड कामा, जिस विज्ञान के अंतर्गत ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन के सहारे भाषा अर्थात विशिष्ट नहीं अपितु सामान्य की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास की सम्यक व्याख्या करते हुए इन सभी के विषय में सिद्धांतों का निर्धारण हो उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। इन्वर्टेड कामा बंद। डॉक्टर अम्बा प्रसाद सुमन का विचार है कि इन्वर्टेड कामा भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषाओं का सामान्य रूप से या किसी एक भाषा का विशिष्ट रूप से प्राकृतिक संरचना, इतिहास, तुलना, प्रयोग आदि की दृष्टि से सिद्धांत निश्चित करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। इन्वर्टेड कामा बंद। अंग्रेजी में भाषा विज्ञान के लिए दो शब्द प्रचलित हैं, फिलोलॉजी तथा लिंग्विस्टिक्स। ब्लूमफील्ड का विचार है कि जिसमें लिखित भाषा का अध्ययन किया जाता है उसे फिलोलॉजी और जिसमें बोलचाल की भाषा का अध्ययन किया जाता है उसे लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त ग्लीसन का विचार है कि जिसमें भाषाओं का अध्ययन उनकी आंतरिक संघटना की दृष्टि से होता है उसे लिंग्विस्टिक्स या डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक कहते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर कुछ विद्वानों की राय यह है कि जिसमें भाषाओं की आंतरिक रचना का अध्ययन किया जाता है उसे लिंग्विस्टिक्स और जिसमें भाषाओं के आंतरिक एवं बाह्य सभी रूपों का अध्ययन किया जाता है उसे फिलोलॉजी कहते हैं। परंतु यह विभाजन भ्रामक है, केवल नामों के अंतर से भाषा विज्ञान की परिभाषा में अंतर नहीं आता। यूं तो भाषा विज्ञान को और भी कितने ये नाम दिए गए हैं, जैसे जर्मन में इसे स्प्रेची विजनशॉफ्ट कहा गया है, फ्रेंच में इसे लागिस्टिक नाम दिया गया है, ग्रीक में इसे लोगोलॉजी नाम से पुकारा गया है और अंग्रेजी में साइंस ऑफ लैंग्वेज नाम भी दिया गया है। परंतु मैक्स मुलर ने इसे फिलोलॉजी कहना ही समीचीन समझा और इसे भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन बताया है। इस फिलोलॉजी की परिभाषा करते हुए ब्रिटेन के विश्वकोश में लिखा है कि फिलोलॉजी शब्द का अर्थ है भाषा का विज्ञान अर्थात भाषाओं की रचना और विकास का अध्ययन। इस दृष्टि से फिलोलॉजी से वही अर्थ लेना चाहिए जो लिंग्विस्टिक शब्द से लिया जाता है। प्रोफेसर एनपी गुणे ने भी इस विज्ञान का नाम फिलोलॉजी किया है और इसकी परिभाषा करते हुए लिखा है कि भाषा के विज्ञान को कंपरेटिव फिलोलॉजी अथवा फिलोलॉजी कहते हैं। साहित्यिक दृष्टि से इसका मुख्य अर्थ भाषा का अध्ययन है, अतएव अंग्रेजी में इसे भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन ही कहा गया है। इस प्रकार हिंदी एवं अंग्रेजी की विविध परिभाषाओं का अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि भाषा विज्ञान में मुख्यतया भाषा के विविध अंगों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यहाँ यह देखा जाता है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा में कौन कौन से परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के कारण कौन कौन से हैं, भाषा के रूपों में एवं शब्दार्थों में कौन कौन से परिवर्तन हुए तथा उन परिवर्तनों के कारण क्या हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी बातों का पर्यवेक्षण करके तुलनात्मक आधार पर इनके बारे में कतिपय नियमों एवं सिद्धांतों का भी निर्धारण किया जाता है। अतः भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा एवं भाषा तत्वों का ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान की उपयोगिता। पहला, भाषा विज्ञान किसी भी भाषा के अध्ययन का मूल आधार होता है। इसके द्वारा लिखित एवं अलिखित, साहित्यिक एवं असाहित्यिक, प्रचलित एवं अप्रचलित, देशी एवं विदेशी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, एक देशीय एवं बहुदेशीय तथा विकसित एवं अविकसित सभी प्रकार की भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। अतः इसकी उपयोगिता सर्वोपरि है और प्रत्येक विकसित एवं विकासशील राष्ट्र इसके अध्ययन एवं अनुशीलन में लीन देखा जाता है, क्योंकि भाषा विज्ञान से ही यह पता चलता है कि भाषा क्या है, उसके कौन कौन से अंग होते हैं, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या भाषा परंपरागत वस्तु है या अर्जित वस्तु, भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण कैसे किया जाता है, भाषाओं के कौन कौन से परिवार हैं, भाषाओं का सांस्कृतिक महत्व क्या है, किसी भी भाषा परिवार की मूल भाषा कौन सी है, संसार की विभिन्न भाषाओं का विकास कैसे हुआ है, क्या सभी भाषाएं किसी एक ही स्रोत से विकसित हुई हैं या उनके मूल स्रोत पृथक पृथक हैं, कोई भाषा कैसे विकसित होती है और कैसे अविकसित अवस्था में ही रह जाती है, भाषा की जीवंत शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, विविध भाषाओं ने भिन्न भिन्न प्रणालियों से कैसे भाव प्रकाशन की शक्ति ग्रहण की है, परस्पर संबद्ध भाषाएं कालांतर में कैसे पूर्णतया भिन्न एवं पृथक हो जाती हैं तथा किस तरह भाषाएं विकसित होकर नए नए रूप ग्रहण किया करती हैं। इस प्रकार भाषा संबंधी विविध जिज्ञासाओं की तृप्ति भाषा विज्ञान के द्वारा ही होती है। दूसरा, भाषा विज्ञान केवल भाषाओं के सम्यक ज्ञान का ही मूल आधार नहीं है अपितु भाषा के विविध ध्वनियों के अनुशीलन की भी सुविधाएं प्रदान करता है। भाषा विज्ञान ही यथार्थ रूप में यह समझाता है कि भाषाओं की कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं, उनमें से कौन कौन सी प्राचीन ध्वनियाँ हैं, कौन सी प्राचीन ध्वनियाँ हैं और कौन कौन सी आगत ध्वनियाँ हैं, कौन कौन सी प्रचलित ध्वनियाँ हैं। भाषा विज्ञान ही देशी एवं विदेशी ध्वनियों के भेद को स्पष्ट करता है, ध्वनियों के परिवर्तन की दिशाएं समझाता है, ध्वनि परिवर्तनों के कारण का ज्ञान कराता है और विविध ध्वनि नियमों की जानकारी प्रदान करता है। इतना ही नहीं, भाषा विज्ञान से ही यह पता चलता है कि एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि में कैसे और क्यों भेद उत्पन्न हो जाता है, ध्वनियों के उच्चारण में क्यों भिन्नताएँ आ जाती हैं, विभिन्न कालों में किस तरह ध्वनियों के उच्चारण परिवर्तित हो जाते हैं तथा किस तरह अनेक ध्वनियाँ लुप्त हो जाती हैं। भाषा विज्ञान ही यह बताता है कि किस तरह श ध्वनि श और कहीं ख की तरह बोली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा शब्द कहीं बरखा और कहीं वर्षा बोला जाता है। ऐसे ही किस तरह री ध्वनि री और कहीं रू की तरह बोली जाती है, जिससे वृक्ष शब्द का रूपांतर कहीं तो बिरछ हुआ है और कहीं रुख हो गया है। इस तरह ध्वनि संबंधी विविध समस्याओं का समाधान एकमात्र भाषा विज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। तीसरा, भाषा विज्ञान के द्वारा ही शब्दों का सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि भाषा विज्ञान ही यह समझाता है कि शब्दों का विकास किस प्रकार होता है, कैसे शब्द तद्भव रूप को ग्रहण किया करते हैं, किस तरह शब्दों में विविध रूपांतर होते रहते हैं, किस तरह एक भाषा से के शब्द दूसरी भाषा में आकर अपने आकार प्रकार को बदल डालते हैं, स्थान भेद से कैसे शब्दों में रूपांतर हो जाता है, उच्चारण भेद से किस तरह शब्दों के रूप कुछ के कुछ हो जाते हैं तथा किस तरह शब्द कहीं अनुकरण के आधार पर, कहीं अनुरणन के आधार पर तथा कहीं अन्य प्रणाली से गढ़ लिए जाते हैं। भाषा विज्ञान ही यह बताता है कि किस तरह से उपाध्याय शब्द घिसते घिसते झाँव रह गया है, किस तरह पर्थंक ग्रंथि का पलथी या पालती शब्द हो गया है, कैसे हिंस्र शब्द परिवर्तित होकर सिंह बन गया है, किस तरह बनर्जी का बंदरजी हो जाता है, किस तरह एक ही भद्र शब्द से विकसित भद्दा और भला शब्द आपस में कितने पृथक हो गए हैं। इस तरह शब्दों की राम कहानी भाषा विज्ञान से ही ज्ञात होती है और इसी से उनके विकास ह्रास परिवर्तन आदि का सम्यक बोध होता है। चौथा, भाषा विज्ञान से ही शब्दों के विविध अर्थों का सम्यक बोध होता है, क्योंकि भाषा विज्ञान ही यह समझाता है कि किस तरह पीढ़ी परिवर्तन के साथ साथ किसी शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है, कैसे वातावरण के कारण एक ही शब्द विभिन्न अर्थों का द्योतक हो जाता है, कैसे शब्दों के अंतर से विस्तार होता है, कैसे संकोच होता है, कैसे अर्थ कुछ के कुछ बदल जाते हैं, किस तरह कहीं किसी शब्द के अर्थ में उत्कर्ष हो जाता है तथा कहीं अपकर्ष हो जाता है। जैसे भाषा विज्ञान यह समझाता है कि किस तरह महाराज शब्द रसोइया का वाचक होकर अपकर्ष की ओर गया है और किस तरह साहस शब्द हिम्मत का बोधक होकर उत्कर्ष की ओर बढ़ा है। भाषा विज्ञान यह समझाता है कि अनेक शब्द देखने में तो एक ही अर्थ के वाचक प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें बड़ा भेद होता है और वे पर्यायवाची होकर भी पृथक पृथक अर्थ के द्योतक होते हैं। जैसे हकीम, वैद्य, डॉक्टर, कविराज आदि शब्द चिकित्सा के ही वाचक हैं, परंतु इनमें परस्पर बड़ा भेद होता है। ऐसे ही स्कूल, मदरसा, पाठशाला, कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि शब्द शिक्षा संस्था के ही द्योतक हैं, किंतु इनमें परस्पर पर्याप्त अंतर होता है। अतः भाषा विज्ञान शब्दार्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं उनके कारणों का सम्यक बोध कराने के कारण अत्यंत उपयोगी होता है। पांचवा, भाषा विज्ञान न केवल भाषाओं के अध्ययन में ही उपयोगी है अपितु साहित्य के अध्ययन में भी अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि साहित्य में प्रयुक्त विविध भाषाओं के निर्माण एवं संरचना का सम्यक ज्ञान भाषा विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है और भाषा विज्ञान ही यह बताता है कि किस तरह कोई बोली धीरे धीरे विभाषा का रूप ग्रहण करती है, कैसे वह लोक भाषा का रूप ग्रहण करती हुई साहित्य रचना एवं लोक व्यवहार में प्रयुक्त होती है और किस तरह का परिनिष्ठित भाषा बनकर उच्च स्तरीय साहित्य के निर्माण में काम आने लगती है। भाषा विज्ञान ही साहित्य के अभिव्यक्ति सौंदर्य एवं अभिव्यंजना कौशल को समझाने में सहायता पहुंचाता है तथा भाषा विज्ञान से ही यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार कोई भाषा विविध शब्द रूपों को ग्रहण करती हुई साहित्य की तीव्रानुभूति को प्रकट करने में समर्थ होती है और किस तरह उसमें साहित्य के मार्मिक भावों का व्यक्त करने वाले शब्दों का निर्माण एवं चयन किया जाता है। छठा, भाषा विज्ञान प्रागैतिहासिक अन्वेषणों के लिए भी अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के मूल उद्गम और मूल स्रोत का पता लगाते लगाते उन भाषा भाषियों के रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, बौद्धिक विकास, राजनीतिक उपलब्धि, धार्मिक विश्वास आदि का ज्ञान भी बड़ी प्रकार हो सकता है। यह विज्ञान या भाषा विज्ञान की ही देन है कि विद्वानों ने आर्य भाषा के उद्गम का अन्वेषण करते करते आर्यों के आद्य स्थान, उनके मूल निवास, उनकी मूल भाषा, उनके रहन सहन, उनकी रीति नीति, उनके धार्मिक विश्वास, उनके खान पान आदि का भी यथेष्ट ज्ञान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, भाषा विज्ञान के द्वारा ही प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के उद्भव तथा विकास का सम्यक ज्ञान उपलब्ध हो सकता है और इसी से मानव जाति के कृत्रिम विकास के इतिहास का बोध भली प्रकार हो सकता है, क्योंकि भाषा विज्ञान ही हमें यह समझा सकता है कि कौन सी संस्कृति विश्वभर में सबसे अधिक प्राचीन है और कौन सी सभ्यता संसार में कब से विकसित हुई है। सातवां, भाषा भी किसी भी भाषा की शुद्धता और उसके शब्द प्रयोगों की साधुता असाधुता का यथेष्ट ज्ञान भी भाषा विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है, क्योंकि भाषा विज्ञान ही हमें यह समझाता है कि किस तरह भाषाओं के शब्दों में कहीं वर्ण विपर्यय हो जाता है, कहीं स्वर या व्यंजन का आगम हो जाता है, कहीं स्वर या व्यंजन का लोप हो जाता है, अथवा कहीं भ्रामक व्युत्पत्ति द्वारा शब्दों को नवीन रूप में डाल लिया जाता है, जिससे कभी कभी भाषा में अशुद्ध प्रयोग प्रचलित हो जाता है और बहुत कुछ प्रयास करने पर भी उसे जनसाधारण के मस्तिष्क से नहीं निकाला जा सकता। उदाहरण के लिए उपरोक्त चिन्ह, राष्ट्रीय, कुल्फी आदि शब्दों को ले सकते हैं, जिनके शुद्ध रूप क्रमशः उपर्युक्त, चिन्ह, राष्ट्रीय, कुफली आदि हैं, किंतु लोक व्यवहार में उक्त अशुद्ध रूपों का ही प्रचार देखा जाता है और शुद्ध शब्दों को बोलने एवं लिखने में लोगों को संकोच होता है। ऐसे ही गांधी कैप टोपी, गुलरोगन का तेल, सनलाइट सोप साबुन आदि ऐसे ही अशुद्ध प्रयोग हैं जिनका व्यवहार जनता में देखा जाता है। यही बात काचू मतलब नखलऊ, नौरंगाबाद आदि शब्दों के उच्चारण में देखी जाती है। इन सभी अशुद्धीय एवं असाधु प्रयोगों की यथेष्ट जानकारी भाषा विज्ञान से ही उपलब्ध हो सकती है। आठवां, भाषा विज्ञान के अध्ययन से मानव जीवन में भी पर्याप्त परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि विश्वभर की भाषाओं के पारस्परिक संबंध एवं उनके उद्भव एवं विकास के ज्ञान से मानवों के संकीर्ण एवं संकुचित दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर आ सकता है। उनकी दृष्टि विशाल बन सकती है, उनके हृदय में उदारता एवं विशालता जागृत हो सकती है और वे विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत होकर भाषागत संकीर्णता, धार्मिक असहिष्णुता, राजनीतिक संकुचिता आदि से मुक्त हो सकते हैं। इतना ही नहीं, भाषा संबंधी विविध विवादों का निर्णय करने में भाषा विज्ञान अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि भाषा विज्ञान ही हिंदी उर्दू के संघर्ष का समाधान कर सकता है और भाषा विज्ञान ही यह समझा सकता है कि हिंदी का उत्तरोत्तर विकास किसी प्रकार की भी भारत की अन्य प्रांतीय भाषाओं के विकास में बाधा नहीं डाल सकता। साथ ही भाषा विज्ञान अन्य भाषा भाषियों के साथ निकट संपर्क स्थापित करने में अत्यंत सहायक होता है, क्योंकि यह भाषा विज्ञान की ही कृपा है कि संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, जर्मन आदि भाषाओं में समानता देखकर एक यूरोपीय परिवार की स्थापना की गई है और भारत से लेकर यूरोप तक आत्मीयता, निकटता एवं समता का प्रचार किया गया है। नौवां, भाषा विज्ञान आधुनिक संचार साधनों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि भाषा विज्ञान के द्वारा ही उन ध्वनि संकेतों का निर्माण सुगमता एवं सरलता के साथ किया जा सकता है जिनका उपयोग दूरसंचार के लिए होता है, तथा भाषा विज्ञान ही उन सांकेतिक शब्दालियों का निर्माण करने में सहायक होता है जिनसे यांत्रिक अनुवाद सरलता से किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पारिभाषिक शब्दावली एवं तकनीकी शब्दों के निर्माण में भी भाषा विज्ञान की उपयोगिता सर्वोपरि है। दसवां, भाषा विज्ञान का उपयोग अववाणी की चिकित्सा के लिए भी होने लगा है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति संसार में ऐसे हैं जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं अथवा शब्दों का सही से उच्चारण नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों के तुतलाने या हकलाने के कारणों की सम्यक जानकारी भाषा विज्ञान द्वारा सुगमता से हो सकती है, क्योंकि भाषा विज्ञान में वाग यंत्र का सम्यक अध्ययन कराया जाता है और यह भी समझाया जाता है कि किस स्थान से कौन सी ध्वनि का उच्चारण होता है तथा उस ध्वनि के उच्चारण में किस किस अवयव का कितना कितना सहयोग होता है। अतएव वाग यंत्र की कमियों को जानकर उनकी चिकित्सा सुगमता से हो सकती है, इसलिए वाणी की चिकित्सा के लिए भाषा विज्ञान की उपयोगिता को भी स्वीकार कर लिया गया है। सारांश यह है कि भाषा विज्ञान हमारी वाणी का विज्ञान है और वाणी का संबंध हमारी भाषाओं से है, हमारे जीवन से है और हमारे दैनिक कार्यों से है। यही कारण है कि आज भाषा विज्ञान की उपयोगिता और भी अधिक प्रतीत होती है, क्योंकि भाषा विज्ञान का अध्ययन न केवल हमें हमारी वाणी एवं भाषा का सम्यक ज्ञान कराता है अपितु हमें ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों, शब्दार्थों आदि की यथेष्ट जानकारी भी उपलब्ध कराता है और हमें बोलने एवं लिखने की कला से भी अभिज्ञ बनाता है। यही कारण है कि भाषा विज्ञान न केवल हमारी भाषागत जिज्ञासा को शांत करता है अपितु हमारी ज्ञान पिपासा को भी तृप्त करता है और हमें भाषा की जीवनी शक्ति का भूत कराता हुआ हमारे दृष्टिकोण को भी उन्नत एवं उदार बनाता है। भाषा विज्ञान की शाखाएं। भाषा विज्ञान का अध्ययन विविध अंगों, भाग एवं शाखाओं में किया जाता है। प्रायः भाषा के चार प्रमुख अंग माने गए हैं, ध्वनि, पद, वाक्य और अर्थ। इन चारों अंगों को आधार बनाकर भाषा विज्ञान की कितनी ही शाखाएं स्थापित हुई हैं। कुछ विद्वानों ने इसी आधार पर भाषा विज्ञान की छह शाखाएं मानी हैं। कुछ ने पांच में ही संतोष किया है और कुछ ने चार शाखाएं स्वीकार की हैं। जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भाषा विज्ञान की छह शाखाएं स्वीकार की हैं। जैसे पहला ध्वनि विचार, दूसरा ध्वनि शिक्षा, तीसरा रूप विचार, चौथा वाक्य विचार, पांचवा अर्थ विचार तथा छठा प्राचीन शोध। यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो पता चलेगा कि उक्त शाखाओं में से ध्वनि विचार और ध्वनि शिक्षा को पृथक पृथक शाखाओं के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं है। डॉक्टर दास ने लिखा है कि सिंगल इन्वर्टेड कामा ध्वनि विचार या ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि के परिवर्तनों का तात्विक विवेचन तथा ध्वनि विकारों का इतिहास आदि सभी बातें आ जाती हैं, पर ध्वनि शिक्षा का संबंध साक्षात ध्वनियों के उच्चारण और विवेचन से रहता है। इन्वर्टेड कामा बंद। यहाँ स्पष्ट पता चल रहा है कि दोनों शाखाओं का सीधा संबंध ध्वनि विज्ञान से ही है, अतः दोनों को पृथक पृथक शाखा के रूप में नहीं माना जा सकता। प्रोफेसर देवेंद्रनाथ शर्मा ने भी भाषा विज्ञान की छह शाखाएं स्वीकार की है। पहला ध्वनि विज्ञान, दूसरा पद विज्ञान, तीसरा वाक्य विज्ञान, चौथा अर्थ विज्ञान, पांचवा कोश विज्ञान तथा छठा भाषिक भूगोल। परंतु आपने इन छह शाखाओं को तो भाषा विज्ञान के छह अंग कहा है, जबकि भाषा विज्ञान की तीन शाखाएं बताई हैं। पहला वर्णनात्मक, दूसरा ऐतिहासिक तथा तीसरा तुलनात्मक। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो पता चलेगा कि प्रोफेसर शर्मा ने जिनको भाषा विज्ञान की शाखाएं कहा है, वे भाषा विज्ञान के अध्ययन की प्रणालियां, पद्धतियां एवं रीतियां हैं, अतः उन्हें शाखाएं कहना नितांत भ्रम है। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने भाषा विज्ञान की पांच शाखाएं मानी हैं। पहला वाक्य विज्ञान, दूसरा पद विज्ञान, तीसरा ध्वनि विज्ञान, चौथा अर्थ विज्ञान और पांचवा प्रागैतिहासिक अनुसंधान। इनमें से डॉक्टर शास्त्री की पांचवी शाखा वही है जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने प्राचीन शोध के रूप में स्वीकार की है, अतः डॉक्टर शास्त्री एवं डॉक्टर दास में कोई मौलिक भेद नहीं है। डॉक्टर अम्बा प्रसाद सुमन ने भी भाषा विज्ञान के पांच शाखाएं स्वीकार की है। पहला वाक्य विज्ञान, दूसरा रूप विज्ञान, तीसरा शब्द विज्ञान, चौथा स्वन विज्ञान और पांचवा शब्दार्थ विज्ञान। आपने डॉक्टर शास्त्री की पद विज्ञान शाखा को दो भागों में विभाजित करके यहाँ प्रस्तुत किया है, इसी कारण पांच शाखाएं हो गई हैं, अन्यथा पद विज्ञान शाखा के अंतर्गत रूप एवं शब्द आ जाते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने भाषा विज्ञान की केवल चार प्रमुख शाखाएं स्वीकार की है, वाक्य विज्ञान, पद विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान। वैसे आपने भाषा विज्ञान की अन्य नवीन पांच शाखाओं की ओर संकेत किया है, जैसे सुर विज्ञान पहला, दूसरा भाषा का दार्शनिक स्वरूप विवेचन, तीसरा बोलियों का वैचारिक अध्ययन, चौथा बोलियों का भौगोलिक वर्गीकरण तथा पांचवा भाषा के मौलिक रूप को लिखित रूप में परिवर्तित करने का विज्ञान। इन सभी शाखाओं का विकास अमेरिका में हुआ है और वहीं पर इन शाखाओं के अंतर्गत कार्य हो रहा है। प्रोफेसर नलिनी मोहन सान्याल ने भी भाषा विज्ञान की चार प्रमुख शाखाएं स्वीकार की हैं। पहला ध्वनि तत्व, दूसरा ऐतिहासिक व्याकरण का गठन तत्व, तीसरा आपेक्षिक विन्यास तत्व, चौथा अर्थ तत्व। आपने शाखाएं तो वे ही स्वीकार की हैं जो पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों ने मानी, किंतु उनके हिंदी नाम कुछ भिन्न दिए हैं। इनके अतिरिक्त डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी भाषा विज्ञान की केवल चार शाखाएं मानी हैं, वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान। ऐसे ही डॉक्टर हरीश शर्मा ने भी भाषा विज्ञान की चार शाखाओं को स्वीकृति प्रदान की है, ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। आपने इन्हें भाषा विज्ञान के अंग कहा है। इसके साथ ही आपने भाषा विज्ञान के कुछ अन्य अंगों की ओर भी निर्देश दिया है, जिनमें से छह प्रमुख हैं। कोश विज्ञान, व्युत्पत्ति विज्ञान, भूभाषा विज्ञान, भाषा प्रकार विज्ञान, शैली विज्ञान और मनोभाषा विज्ञान। इस प्रकार भाषा विज्ञान की विविध शाखाओं का अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि विद्वानों ने ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, शब्द विज्ञान, अर्थ विज्ञान, कोश विज्ञान, व्युत्पत्ति विज्ञान, भूभाषा विज्ञान, भाषा प्रकार विज्ञान, शैली विज्ञान, मनोभाषा विज्ञान, प्रागैतिहासिक अनुसंधान, लिपि विज्ञान आदि अनेक शाखाओं की ओर संकेत किए हैं। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि भाषा के चार प्रमुख अंग होते हैं, ध्वनि, रूप, वाक्य और अर्थ। अतः भाषा के इन चार प्रमुख अंगों के आधार पर भाषा विज्ञान की चार प्रमुख शाखाएं ठहरती हैं। पहला ध्वनि विज्ञान यानी फोनोलॉजी, दूसरा रूप विज्ञान यानी मॉर्फोलॉजी, तीसरा वाक्य विज्ञान यानी सिंटैक्स, चौथा अर्थ विज्ञान सेमेंटिक्स। पहला ध्वनि विज्ञान, इसे आजकल स्वन विज्ञान के नाम से भी पुकारते हैं। इस शाखा के अंतर्गत वाक् ध्वनियों का वर्गीकरण वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। ध्वनि को भाषा की लघुतम इकाई माना गया है और विभिन्न ध्वनियों के संयोग से भाषा का निर्माण होता है। अतएव ध्वनि विज्ञान में सर्वप्रथम यह अध्ययन किया जाता है कि ध्वनि उत्पादक अवयव कौन कौन से होते हैं। साधारणतया जिन अवयवों से ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें सामूहिक रूप से वाग्यंत्र कहते हैं। इस वाग्यंत्र के ध्वनि उत्पादक कई अवयव होते हैं, जैसे कंठ, काकल, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जिह्वा, नासिका आदि। इन ध्वनि उत्पादक अवयवों में से निकलकर जब हमारी श्वास वायु मुख विवर में होकर बाहर निकलती है तब उससे विभिन्न ध्वनियों की उत्पत्ति होती है। अतः भाषा विज्ञान में विविध ध्वनियों के उत्पादक अवयवों एवं उनसे उत्पन्न विविध ध्वनियों का सम्यक अनुशीलन किया जाता है। वाग्यंत्र से निःसृत ध्वनियाँ विविध प्रकार की होती हैं। इनमें से कुछ नाद एवं कुछ श्वास ध्वनियाँ कहलाती हैं। नाद ध्वनियाँ पुनः दो प्रकार की होती हैं, स्वर एवं व्यंजन। स्वर ध्वनियों का विभाजन जिह्वा की आड़ी तिरछी स्थिति, ओष्ठों की स्थिति तथा मांसपेशियों की दृढ़ता एवं शिथिलता के आधार पर किया जाता है। प्रायः मूल स्वर अथवा मानक स्वर 9 माने गए हैं। अ, आ, अ, ओ, ओ, उ, ई, ए, ए। साथ ही कुछ संयुक्त स्वर भी होते हैं। इन सभी स्वर ध्वनियों का सम्यक रूप में अध्ययन ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जिस प्रकार यहाँ स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है उसी प्रकार यह भी देखा जाता है कि व्यंजन ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उन्हें उच्चारणोपयोगी अवयवों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है और उच्चारण की रीति के अनुसार उनके कितने रूप होते हैं। प्रायः उच्चारणोपयोगी अवयवों की दृष्टि से व्यंजनों के 8 भेद किए जाते हैं। काकल्य, कंठ, मूर्धन्य, तालव्य, वर्ष, दंत, ओष्ठ और जिह्वामूलीय। ऐसे ही उच्चारण की रीति के अनुसार भी व्यंजकों के 8 भेद होते हैं। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, अनुनासिक, पार्श्विक, लुंठित, उच्छिप्त और अर्धस्वर। इनके लक्षण एवं उदाहरण आदि का सांगोपांग अध्ययन इसी ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ध्वनि विज्ञान में केवल ध्वनियों के स्वरूप एवं उनके भेद प्रभेदों का ही अध्ययन नहीं किया जाता अपितु ध्वनियों का उच्चारण करते समय वाग्यंत्र की असमानता, व्यक्ति का प्रमाद, अज्ञान या असावधानी, वैयक्तिक भावावेश आदि के कारण जो ध्वनियों में विविध प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं उनका भी सम्यक अध्ययन किया जाता है। ये ध्वनि परिवर्तन बड़े विचित्र एवं अद्भुत होते हैं। इनमें कहीं स्वरों का और कहीं व्यंजनों का लोप हो जाता है, कहीं वर्णों का आगम हो जाता है, कहीं वर्ण विपर्यय हो जाता है, कहीं ध्वनि समीकरण हो जाता है, कहीं विषमीकरण हो जाता है, कहीं संघोषीकरण हो जाता है, कहीं अघोषीकरण हो जाता है, कहीं महाप्राणीकरण हो जाता है, कहीं अल्प प्राणीकरण हो जाता है, तथा कहीं और बहुत से ध्वनि परिवर्तन हो जाते हैं। इन सभी ध्वनि परिवर्तनों का निरीक्षण एवं परीक्षण करके तथा सम्यक रूपेण वर्गीकरण एवं विश्लेषण करके इन विविध परिवर्तनों के विविध कारणों को जानने का भी पूर्ण प्रयास किया जाता है। प्रायः इन ध्वनि परिवर्तनों के कुछ तो बाह्य कारण होते हैं और कुछ आंतरिक, जैसे भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैयक्तिक आदि कारण तो बाह्य होते हैं, जबकि प्रयत्न लाघव, प्रमाद, अज्ञान, भावावेश, कवियुगत निरंकुशता आदि कुछ आंतरिक कारण होते हैं। इन सभी ध्वनि परिवर्तनों एवं इनके कारणों का पूर्णतया वैज्ञानिक अध्ययन इस ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत स्वराघात एवं बलाघात का भी सम्यक अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक भाषा में यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि उसके शब्दों में से किसी ध्वनि पर अधिक बल देकर उस ध्वनि का उच्चारण किया जाता है और किसी ध्वनि पर बल नहीं दिया जाता। इस बल देने की प्रवृत्ति को ही बलाघात या स्वराघात कहते हैं। यह स्वराघात तीन प्रकार का होता है, संगीतात्मक स्वराघात, बलात्मक स्वराघात और रूपात्मक स्वराघात। इस आघात एवं बल के कारण किसी किसी भाषा के अंतर्गत तो शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन हो जाता है। अतएव यह स्वराघात एवं बलाघात ध्वनि विज्ञान का अत्यंत मनोरंजक विषय है, जिसका विशद अध्ययन यहाँ किया जाता है। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत उन ध्वनि नियमों का अध्ययन भी अत्यंत विशद्धता एवं वैज्ञानिकता के साथ किया जाता है, जो विविध प्रकार के ध्वनि परिवर्तनों को देखकर बनाए जाते हैं। यद्यपि वे ध्वनि नियम प्राकृतिक नियमों की भांति अचल एवं स्थिर नहीं होते, तथापि ये भी एक सीमित काल एवं सीमित कार्य क्षेत्र के अंतर्गत अपना कार्य किया करते हैं। इन ध्वनि नियमों का अनुशीलन करते समय यहाँ यह देखा जाता है कि अमुक ध्वनि नियम का संबंध किस अवधि से है, वह किस भाषा या भाषाओं से संबंधित है और वह किन किन सीमाओं के अंतर्गत अपना कार्य करता है। इन ध्वनि नियमों में से ग्रिम नियम, ग्रासमान का नियम, वर्नर का नियम, मिथ्या सादृश्य का नियम, तालव्य भाव का नियम आदि अधिक प्रसिद्ध हैं, जिनका सम्यक अनुशीलन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार ध्वनि विज्ञान में ध्वनि के उत्पादन, संवहन एवं ग्रहण संबंधी तीन कार्यों का विशद अध्ययन किया जाता है। इन्हीं कार्यों के आधार पर ध्वनि विज्ञान की तीन शाखाएं हो गई हैं, उत्पादन मूलक विज्ञान, संवहन मूलक विज्ञान और ग्रहण मूलक विज्ञान। इनमें से उत्पादन एवं ग्रहण का संबंध क्रमशः वाग्य यंत्र एवं श्रवण से है तथा संवहन का संबंध उन वायु तरंगों से है जिनके द्वारा कोई ध्वनि वाग्य यंत्र से निकलकर कान तक पहुंचती है। इनके अतिरिक्त ध्वनिग्राम विज्ञान का भी विकास हो गया है, इसका अध्ययन ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अतएव संक्षेप में ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि ध्वनि उत्पादक अवयव कौन कौन से होते हैं, कोई ध्वनि मुख या नासिक से निकलकर कान तक कैसे पहुंचती है, कानों के द्वारा यह ध्वनि कैसे ग्रहण की जाती है, ये वाक् ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ध्वनि गुण किसे कहते हैं, ध्वनिग्राम से अभिप्राय क्या है, ध्वनि विकार किन किन दशाओं में होते हैं, इन ध्वनि विकारों के कौन कौन से कारण होते हैं, स्वराघात या बलाघात क्या है, ध्वनि नियम कौन कौन से प्रचलित हैं आदि आदि। अतः वाक् विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन का कार्य ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जो भाषा के सम्यक ज्ञान के लिए अत्यंत अपेक्षित एवं उपयोगी होता है।